તારીખ 22/4/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 331 અને 332 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું બોરીવલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 312
ચંદ્રવૃષ્ણામૃત પત્ર 331 પાનું 318 સૌભાગ્યભાઈ ઉપર લખેલો પત્ર છે. વિતરાગપણે અત્યંત વિનયપણે પ્રણામ. સૌભાગ્યભાઈ પ્રત્યે બહુમાન હતો એ આ શબ્દોમાં સમજાયું છે. ભ્રાંતિગતપણે સુખ સ્વરૂપ ભાસે છે એવા સંસારી પ્રસંગ અને પ્રકાર, તેમાં જ્યાં સુધી જીવને વાલપ વર્તે છે ત્યાં સુધી જીવને પોતાનું સ્વરૂપ ભાસવું અસંભવિત છે. ભ્રાંતિગત રૂપ સે સુખ સ્વરૂપ ભાષિત હોતા હૈ, એસે સંસાર કે પ્રસંગ ઓર સંસાર કે કોઈ ભી પ્રકાર જબ તક જીવ કો એસી પરિસ્થિતિ મેં અચ્છા લગતા હૈ, મીઠા લગતા હૈ, તબ તક જીવ કો અપના સ્વરૂપ ભાષ્યમાન હોના અસંભવિત હૈ. ભાષિત હોના, ભાષ્યમાન હોના માને લગના, ये लगने की बात है, समझने की बात नहीं है. ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक समझ का और एक लगने का. ज्ञान के दो प्रकार है, यानी एक विचार रूप और एक फीलिंग रूप, लगने रूप, याने वेदन रूप. विचार रूप याने वेदन रूप, दो प्रकार का ज्ञान होता है. जीव को दोनों प्रकार में भूल रही है, समझ में भी विपरीतता और वेदन माने अनुभव में भी विपरीतता. दो प्रकार की विपरीतता ज्ञान में अनादि से चल रही है. तो जो विपरीत समझ है वो सही समझ से दूर हो जाती है. विपरीत समझ का दूर होने का यही इलाज है कि सही समझ करने पर विपरीत जो गलत समझ है वो मिट जाती है और जो अनुभव की भूल है, वेदन की भूल है, तो स्वरूप का ज्ञान का स्वसंवेदन बिना वो भूल नहीं मिटती. मैंने गलत अनुभव होता है वो सही अनुभव से मिटता है. अनुभव की भूल विचार से नहीं मिटती, अनुभव की भूल मिटाने के लिए सही अनुभव चाहिए. ऐसे ही बात सलटती है, सलटती है. तो ज्ञान की दोनों प्रकार की विपरीतता है वो अविपरीतता को उसी तरह से प्राप्त होती है. तो हमारी जो गलत समझ है विपरीत समझ है और स्वाध्याय आदि से सत्संग से हम उसको सुधार लेते हैं। लेकिन हमारा जो अनुभव में विपरीतता है वो तो जब तक हमारा अनुभव ठीक नहीं होता है वहां तक वो विपरीतता नहीं मिलती। इसका दृष्टांत वो है कि शरीर का वेदन है वो ज्ञान का वेदन नहीं है, लेकिन शरीर में अपनापन का अनुभव है वो आत्मा में आत्मज्ञान का अनुभव हुए बिना देहात्म बुद्धि मिटती नहीं। हमारी समझ ठीक हो गई, देह नहीं देह है वो आत्मा नहीं, फिर भी वो वेदन का जो विषय है वो तो सही वेदन से ही ठीक होगा। इस तरह से यहाँ वेदन की बात है कि भ्रांतिगत रूप से सुख स्वरूप लगता है, सुख और दुख वो विचार का विषय नहीं है, केवल वो अनुभव का विषय है मुख्य रूप से। कोई ऐसा नहीं बोलता कि हमको सुख समझ में आ गया या दुख समझ में आ गया, दुख लगने लगा और सुख लगने लगा, क्योंकि वो अनुभव की चीज है, वो समझ केवल समझ करने की चीज नहीं है। तो संसार के कितने प्रसंग ऐसे हैं या कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि जिसमें सुख लगता है, सुख नहीं है तो भी, इसको कहते हैं भ्रांति। भ्रांति माने जहाँ जो चीज नहीं है वहाँ वही चीज का अनुभव होना, वो भ्रांति है। संसार के प्रसंग और संसार के पदार्थ में आत्मा का सुख है ही नहीं, इसलिए संसार में कोई सुखी देखने में नहीं आता, यही कारण है। किसी को भी पूछो कि आप सुखी होगे तो बोलेगा कि नहीं, हमको ये तकलीफ है, हमको वो तकलीफ है, आदि व्याधि और उपाधि कुछ न कुछ तो चलता ही है। इसलिए वो चलता है कि जहाँ सुख नहीं है वहां से सुख प्राप्त करने का परिश्रम या प्रयास जीव करता रहता है और मिलता तो है ही नहीं, क्योंकि जहाँ जो चीज है नहीं वहां से मिलने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। ऐसे प्रसंग में जीव को अच्छापन लगता है, सुख लगने से क्या लगता है, मिठास लगती है, मीठा लगता है। वहां तक जीव को अपना स्वरूप जो सुखमय है वो नहीं लगेगा, वास्तव में तो सुख है वो आत्मा का स्वरूप में है, लेकिन बाहर में सुख नहीं है वहां भ्रांति है सुख सुख की, तो आत्म सुख है वो अनुभव में आएगा नहीं। भ्रांति दूर होने से ही वो अनुभव में आता है, ये कहने का मतलब है। ये सुख दुख का विषय, सुख दुख की बात जीव के लिए बहुत प्रयोजनभूत यानी मतलब की बात है, इसलिए इस विषय में गहराई से विचार करना चाहिए और निश्चय करना चाहिए। और वो निश्चय करने में हमको हमारा अनुभव ज्ञान को साथ में रखना चाहिए, क्योंकि ये अनुभव की चीज है। इसलिए अनादि से इस विषय में जीव की भूल चली आ रही है। अपना स्वरूप तो सुखरूप नहीं लगेगा, परंतु सत्संग की महिमा भी जैसी लगनी चाहिए वैसा होना असंभव ही है। दूसरी बात क्या कि आत्मा में आत्मा का सुख है, स्वरूप में मेरा सुख है, वो बात तो समझ में नहीं आएगी। लेकिन वो समझने का जो प्रसंग है वो सत्संग है, उसका भी मूल्यांकन सही रूप से नहीं होगा। ये एक विशेष बात है। जीव को बाह्य प्रसंग की महिमा है और सुखरूप लगता है तो उसको सत्संग है, उसकी सही महिमा नहीं आती, क्योंकि आत्मा में सुख लगने की बात तो वहाँ ही है, सत्संग में ही है, और जगह नहीं है। इसलिए यानी हम मुमुक्षु लोग सत्संग करते हैं, फिर भी सबको सत्संग का मूल्य एक सा नहीं है, है क्या? नहीं। इसका क्या कारण? कि बाहर में जो सुख लेने की वृत्ति है और बाहर में सुख है ऐसा जो निश्चय बन गया है या बना हुआ अनादि से चालू है, उसमें जितना लगाव है, तीव्रता है, सत्संग का मूल्य उतना नहीं आएगा। यही कारण है। थोड़ा उस बात को अपने परिणामों से मिलान कर देना, संयोग की सुख बुद्धि है। सीधी बात करें, संयोग की सुख बुद्धि है उसमें सत्संग का मूल्य कम हो जाता है। दूसरे लोगों को तो ये बात मालूम है ही नहीं, सत्संग की महिमा या मूल्यांकन तो है ही नहीं। लेकिन जो सत्संग को थोड़ा बहुत अटेंड करते हैं उनको ये बात विचार करने योग्य है। इस सत्संग को, सत्संग का सही मूल्य किसको आता है? कि जिसको आत्मा में से सुख लेना है और आत्म सुख की प्राप्ति करना है और इसके पीछे जो मुमुक्षु लगा हुआ है उसको सत्संग का मूल्य आएगा। बाकी संयोग में सुख बुद्धि है उनको उतना सत्संग का मूल्य नहीं आएगा। तो क्या है कि संयोग में कुछ हेरफेर हुआ सत्संग को छोड़ देगा, सत्संग को गौण कर देगा, ये बात बने। वो हमने अभिप्राय में बना रखा है इसलिए ऐसा होता है। बाकी हम कितनी भी मुख्यता करें, संयोग वियोग सब प्रारब्ध अनुसार होने वाला है, हमारी मुख्यता अनुसार उसमें कुछ होने वाला है वो बात नहीं है। यानी हमारे हाथ की वो बाजी है ही नहीं, क्या हम कुछ हेरफेर कर सकते हैं? हम क्या इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र कोई भी उदय में फेरफार नहीं कर सकता। उत्पन्न हुआ उदय को कोई टाल नहीं सकता। हम चाहे मुख्य करें चाहे हम काम करें, मुख्य करने से हम हमारे वर्तमान परिणाम को बिगाड़ करके नया कर्म बंधन अधिक कर लेते हैं। इसका नुकसान हमको मालूम नहीं है तो हम नुकसान मोल लेते हैं। नुकसान मालूम हो जाए तो हमको ये परिणाम में अवश्य अवश्य हिचकिचाहट आएगी और आएगी। नुकसान हमको मालूम होना चाहिए। हम कितना नुकसान का व्यापार कर लेते हैं या कर रहे हैं ये बात है। सत्संग का मूल्य भावभाषण वाले को, यानी स्वरूप में जिसको सुख का भाष्यमान पड़ा, आंशिक अनुभव से लगने का हुआ, उसको जितना आएगा उतना नीचे की भूमिका वाले को नहीं आएगा। क्यों? भावभाषण में सत्संग का की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही उनका अनुभव उसको आया, उसको ही इसका अनुभव आया, इसलिए उसको सत्संग का मूल्य बहुत आएगा, बाकी नहीं आ सकता। सत्संग का महात्म भी तथा रूप रूप से, यानी जितना होना चाहिए उतना भाष्यमान होना असंभव है। क्या बात किया? एक तो अपना स्वरूप की बात किया, दूसरा स्वरूप प्राप्त करने का साधन जो सत्संग है उसकी बात किया, दो बात किया। किसके साथ जुड़ा? के जो भ्रांतिगत रूप से सुख है, बाह्य पदार्थ में सुख है, संक्षेप में कहे तो अनु वो सुख आत्मिक सुख को लगने नहीं लग देता और वो आत्म भी नहीं रहेगा। दोनों बात साथ में लिया है। यह संसारगत वालप मैंने मिठास, संसार में जो मीठापन लगता है, अच्छापन लगता है, यह मीठापन असंसारगत विषय में प्राप्त नहीं होवे, मैंने मोक्ष के विषय में, आत्मकल्याण के विषय में, खास करके पुरुषार्थ करके हमें संसार में जो अच्छापन लगता है वो हमको जहर खाने के बराबर है। किसके बराबर है? जहर खाने के बराबर है। आत्मकल्याण में उतना अच्छा लगना चाहिए, इससे ज्यादा वो बात वहां ट्रांसफर हो जानी चाहिए। संसार में जो अच्छापन लगता है वो संसार के परिभ्रमण का कारण है। जो संसार में अच्छापन लगता है वो संसार में परिभ्रमण का कारण है। तो हमको अच्छापन तो लगना चाहिए कहाँ, आत्म कल्याण के विषय में, यानी संसार मिटने के विषय में लगना चाहिए अच्छापन। ऐसा नहीं लगे वहां तक, ऐसा नहीं होवे वहां तक, हमको बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। इस विषय में हमको जरूर पुरुषार्थ करना चाहिए। और तीनों काल में इस विषय में विसंवाद माने आर्गुमेंट, दलीलबाजी नहीं होनी चाहिए। इस विषय में कोई आर्गुमेंट मत करो। क्या हमको आत्मकल्याण ही अच्छा लगना चाहिए और अकल्याण का जो कारण है संसार वो अच्छा नहीं लगना चाहिए, वो बात में कोई दलील का अवकाश नहीं है। तीनों काल में यह बात और भी संवाद जान करके निष्काम भाव से लिखी है। निष्काम मैंने केवल आत्म कल्याण के हेतु से लिखी है और कोई हमारा प्रयोजन नहीं है
उसमें।
जीव क्या करता है, कुछ न कुछ बात आगे रख देता है। जिम्मेवारी का क्या, चलो हमको अनेक प्रकार की सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसका क्या। तो ज्ञानी कहते हैं कि अगर आयुष्य पूरा हो जाएगा तो जिम्मेवारी का क्या होगा, बताओ। देखो हम हमारे परिवार में सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े मैंने सब कंट्रोल किया अब तक हमने, तो हम सब बात को कंट्रोल करते हैं, तो जिम्मेवारी भी हमारे पे आ जाती है। आती है कि नहीं आती, क्या करें, आत्मकल्याण करें या ये जवाबदारी पूरी करें, क्या करें। आयु पूरा हो जाएगा तो क्या करोगे। इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी आत्म कल्याण को देना, बाकी जो जैसा हुए होने लायक है वैसा होने देना, पहले आत्म कल्याण को मुख्यता देना। बहन से तो वहां तक कहते थे कि जिंदा मर जाना, क्या जीवता मरी जता आवड़वू जोईए, अने तो आत्मकल्याण थाय, तभी आत्मकल्याण होता है। इसके पहले आत्मकल्याण नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। पहले तुम आत्मा हो या पहले तुम संसार में तुम्हारा जो स्थान है वो तुम हो, पहले कौन तुम, पहले कौन हो तुम। तो आत्मा को आत्मकल्याण करने की जिम्मेवारी है कि नहीं है, वो तो हम निभाते नहीं। दूसरी दूसरी जिम्मेवारियां हमको निभानी चाहिए, ऐसा अभिप्राय रखते हैं, तो फिर परिभ्रमण नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, क्या होगा? ये जुम्मेवारियां आत्मबुद्धि होने से ही होती है। कैसे होती है? आत्मबुद्धि होने से। जिज्ञासा, ये जुम्मेवारी तो हमारे संग प्रसंग में कर्मोदय में आत्मबुद्धि होने से ही होती है, यानी पर में निज बुद्धि होने से ही होती है, पर वही परिभ्रमण का कारण है। पांच सौ उनचालीस अन्य पदार्थ में जीव जो निज बुद्धि करता है तो परिभ्रमण दशा को प्राप्त करता है, मत परिभ्रमण का कारण स्पष्ट सैद्धांतिक रूप से कर दिया है कि अन्य पदार्थ में जीव जो निज बुद्धि करता है तो परिभ्रमण दशा को प्राप्त करता है, और निज में निज बुद्धि होती है तो परिभ्रमण का नाश होता है। ये परिभ्रमण के विषय में संक्षेप में विचार बता दिया है, बहुत संक्षेप में एक ही वचन में। ये परिभ्रमण का कारण है, ये परिभ्रमण मिटने का कारण है। अब तुमको अच्छा लगे वो करो। कहने वालों ने कह दिया, बताने वालों ने बता दिया, अब हमको विवेक हमको करना है कि हमें क्या करना चाहिए। फिर बाद में तो ऐसा लिया है कि जिसके अभिप्राय में, जिसके चित्त में, जिसके अभिप्राय में ऐसा मार्ग विचार करना जरूरी लगा कि अरे परिभ्रमण से छूटना चाहिए हमको, ऐसी जरूरत जिसको लगी हो उसे, वैसा ऐसा ज्ञान जिसके आत्मा में प्रकट हो गया है, प्रकाशमान हुआ है, ऐसा जो ज्ञानी, उसकी दासानुदास रूप से अनन्य भक्ति करना यह परम श्रेय है। ये आई मूल्यांकन की बात, कैसा जन्म मरण को मिटाने वाला उपाय जगत में तो कोई बताता नहीं है, अगर कोई बताता है तो उसके प्रति बहुमान, बहुत बहुत बहुमान आना चाहिए, उतना कि इसकी भक्ति करने वाले की भी भक्ति करे, उसको दासानुदास पुण्य भक्ति कहते हैं, कि इसका दास है उसका दास हो जाए। गुरुदेव जब विराजमान थे तो हम लोग आपस में शुरू में ऐसी चर्चा करते थे कि गुरुदेव प्रति कितनी भक्ति होनी चाहिए, कि सोनगढ़ का एक कुत्ता भी हमारे यहाँ आवे ने, ऐसे हम चर्चा करते थे, सोनगढ़ से एक कौवा भी उड़ करके भी आ जाए ने तो हमको विशेषता लगनी चाहिए, अरे ये तो क्या हमारे गुरु विराजते हैं, वहां से ये कुत्ता आया है, वहां से ये कौवा आया है, ऐसे हम शुरू में चर्चा करते थे, इतना बहुमान आना चाहिए कि वहां से आने वाले कुत्ता को भी अच्छी तरह खिलाए, ये सोनगढ़ से आया है, ऐसे हम शुरू में चर्चा करते सोनगढ़ गए तो। मुमुक्षु की तो बात ही क्या करें, तो कुत्ते का उतना आदर करना तो फिर मुमुक्षु की तो बात ही कहाँ करना। ये आदर गुरु प्रत्येक का आदर है। किसका आदर है? गुरु प्रत्येक का आदर। और वो बात हमको अच्छी तरह समझ में आती है। संसार में तो हम वैसा ही करते हैं कि हमारे लड़की का सगाई जहाँ किया हो वो विवाह के वहां से कोई चाकर चिट्ठी लेके आता है, खाली चिट्ठी देने को, जैसे कोई पोस्टमैन आता है वैसे, तो ऐसा बोलेगा कि आपके जो विवाह हैं मैं उसके वहां नौकरी करता हूँ और आपको ये चिट्ठी भेजनी है इसलिए हमको भेजा है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तुम बैठो बैठो बैठो, क्या करेंगे हम? तुम चाय नाश्ता लेके जाना। वो बात बात में उसने बता दिया कि मैं तो नाई हूँ, नाई बाल काटने वाला। क्या तुम कुछ भी हो, हमारे विवाह के तो आदमी हो। हाँ हाँ, और ऐसी मिठाई खिलाई, ऐसी चीज खिलाई, उसमें वो आदमी का आदर नहीं है, वास्तव में वो बेवाई का आदर है क्या? नहीं, क्योंकि लड़की के ससुर है। तुम सब बात हमको समझानी नहीं पड़ती, बराबर समझ में रहती है, वो बात रहती है कि नहीं रहती? जैसे ज्ञानी के गुरु के प्रति कितना आदर होना चाहिए वो कृपालु देव ने बताया है कि उसकी दासानुदास अपने भक्ति आनी चाहिए, होनी चाहिए, तभी तो हमको परिभ्रमण मिटाने का उपदेश चढ़ेगा, वरना ये उपदेश चढ़ने वाला है ही नहीं। तो बात तो भलाई के लिए किया है। संसार में जैसे वो वास्तविकता समझ में आती है, ऐसी जब यहां समझ में आती है तभी ये उपदेश लागू पड़ता है, उपदेश की असर होती है, वरना उपदेश तो सुनते हैं उसकी असर नहीं होती, यही कारण है इसका, असर नहीं होने का यही कारण है। तो ये बात में निर्विवाद रूप से इस बात को समझना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, वो निष्काम भाव से लिखी गई है। अब 332 नंबर का पत्र है, उसके पीछे कि आरंभ और परिग्रह का जैसे जैसे मोह मिटता है, यानी जैसे जैसे उसमें अपनापन का अभिमान, मैंने अहम भाव, मेरा अपना भाव, अपनापन का भाव मंद परिणाम को प्राप्त करता है, वैसे वैसे मुमुक्षुता वर्धमान हुआ करती है। मुमुक्षुता कैसे बढ़े? मुक्त होना है जिसको, उसको कहते हैं मुमुक्षु। जिसको मुक्त होना है, मोक्ष की इच्छा वाले को कहते हैं मुमुक्षु। और कहां बंधा हुआ है वो, आरंभ और परिग्रह में। इसके परिणाम कहां प्रतिबंधित होता है, क्या आरंभ और परिग्रह में। तो जिसको छूटना है, परिभ्रमण से छूटना है, वो परिभ्रमण के कारण से उसको छूटना पड़ेगा। तो कहते हैं कि उसके प्रति मोह जैसे जैसे मिटता है, मोह मिटता है मैंने अपनापन मिटता है, यानी मंद परिणाम को प्राप्त करता है, यानी पतला हो जाता है, फिक्का हो जाता है। जैसे जैसे ये पतला होता है वैसे मुमुक्षुता वर्धमान होती है, मुमुक्षुता बढ़ती है। तो पूछते हैं कि हमको मुमुक्षु की भूमिका में आगे बढ़ना है, हम क्या करें। ठीक, हमसे आगे नहीं बढ़ा जाता है। बहुत साल से स्वाध्याय सत्संग करते हैं लेकिन हमारे में कोई आगे बढ़ने का नहीं होता है, क्या करें, ये सवाल होता है। कि आरंभ परिग्रह में अपनापन किया है उसको पतला करो, उसमें निरत हो जा, तभी मुमुक्षुता बढ़ेगी। यहाँ पकड़ रख करके हम सत्संग करते हैं तो हमारा सत्संग है वो सफल नहीं हो पाता, निष्फल रहा करता है, यही कारण है इसका। अनंत काल से परिचित ऐसा यह अहम भाव, अपनापन का भाव, अभिमान में नहीं, ये मान बुद्धि वाली बात नहीं है, अपनापन किया है ऐसा, इसे इसको अहम भाव कहते हैं, अहंकार कहते हैं, उसको अभिमान भी कहते हैं, मूल बात तो वही है। वह बहुत करके एकदम मैंने शीघ्र ही नाश को नहीं प्राप्त होता, उसका नाश जल्दी से नहीं होता। क्या अनंत काल से अपनापन किया है शरीर में और प्राप्त संयोग में, अनंत काल से किया है तो वो जल्दी से वो नाश को प्राप्त नहीं होता, संभवित है। इसलिए तो क्या करना चाहिए कि इसलिए तन मन धन कि जिसके प्रति अपनापन वर्तता है यह ज्ञानी के प्रति समर्पण करने में आता है। ये जो समर्पण वाली बात है वो अपनापन मंद करने के लिए है, इसके पीछे यही एक ही कारण है। त्याग करना, दान देना, इसका मतलब क्या है, सेवा करना तन से मन से धन से, अपनापन कम करने की बात है वहां, दूसरी कोई बात नहीं है। यानी मैंने ऐसा किया ऐसा अहम भाव भी नहीं करना है, अपनापन को मंद करना है इसके प्रति। इसलिए ये हेतु से, यही हेतु से वो बात है। बहुत करके ज्ञानी कुछ उसको ग्रहण नहीं करते, क्यों, कि उसने तो अपनापन छोड़ा है तो अपनापन क्यों करेगा, वो तो नहीं करेगा। परंतु उसमें से अपनापन मिटाने का ही उपदेश देते हैं। देखो बात तो ये कि अपनापन मिटाने की बात है, अपना तो उसमें कैसा कम होवे वही बात है। अब जो भी परिस्थिति है वो तो पूर्व कर्म के अनुसार होती है, वर्तमान प्रयत्न के अनुसार नहीं होती। तो जो भी संपन्नता है उसको सन्मार्ग में इसका सदुपयोग करना, उसमें अपना अपनापन करके परिभ्रमण नहीं बढ़ाना, लेकिन अपनापन कम करके उसको सन्मार्ग में इसका सदुपयोग हुए ऐसी भावना रखना और ऐसा ही करना। और ज्ञानी ऐसा ही उपदेश देता है। और करने योग्य भी ऐसा ही है, और करने योग्य भी ऐसा ही है कि अपनापन मिटाना ही चाहिए, तभी मुमुक्षुता में आगे बढ़ करके ज्ञान दशा की प्राप्ति होगी और मुक्ति का मार्ग शुरू होगा। मुमुक्षुता ही आगे नहीं बढ़ेगी तो मोक्ष मार्ग प्राप्त होने की तो परिस्थिति आएगी कहां से। करने योग्य भी ऐसा ही है कि आरंभ और परिग्रह को बार बार प्रसंग प्रसंग में, बार बार के प्रसंग में विचार कर करके उसमें अपनत्व होने को का विरोध करना कि मुझे उसमें अपनापन क्यों होता है, मुझे उसमें अपनापन क्यों होता है, मुझे उसमें अपनापन क्यों होता है। गुजराती मतो वो सारो भाव लीधो से आरंभ परिग्रह ने वारंवार ना प्रसंगे विचारी विचारी पोताना थता अटकाववा। आरंभ परिग्रह ने अटकाववा केवी रीते अटकाववा, કે સમર્પણ કરીને અટકાવવા એમ કે છે, એટલે શું કે પોતાપણું એમાં અટકાવવું, પોતાપણાનો જે ભાવ થતો હતો એને અટકાવવાની વાત છે। જરા ઇફેક્ટિવ લાગે એટલે એને આરંભ પરિગ્રહને પોતાના થતા અટકાવવા એમ કે છે, એમાં મને મારાપણું કેમ વર્તે છે, એમાં મને મારાપણું કેમ વર્તે છે, એમાં મને મારા મારાપણું કેમ વર્તે છે। સમર્પણ કરવું એટલે શું છે કે જ્યારે આપણે આપણો માલિકી હક નથી એના ઉપર, અને છતાં લોકો એમ કે છે કે ભાઈ આ ચીજ તો તમારી છે, તમે એના હકદાર છો, આપણે તો એના ઉપર હક રાખવો નથી, તે કરવું શું કે આવો જે સુખી થવાનો પારમાર્થિક પરમ કલ્યાણકારી માર્ગ છે તે જગતના બીજા જીવોને પણ પ્રાપ્ત થાય એવા જે ઉપાયો છે એ ઉપાયમાં એનો ઉપયોગ કરી નાખો કે બીજા જીવો સુધી એ વાત પહોંચે। આપણે શાસ્ત્ર શા માટે શક્ય છે, આપણું જે પીરિયોડિકલ છે માસિક પત્રી મફત શું કરવા મોકલીએ છીએ, એ કોઈ મફત મોકલતું નથી, કઈ ને કઈ લવાજમ રાખે છે, આપણે લવાજમ નથી રાખતા, એની પાછળ ભાવના એક છે કે આમાં જે જ્ઞાની પુરુષોના વચનો છે, આત્મકલ્યાણકારી વચનો છે, એ વાત બધા સુધી પહોંચે અને એ પહોંચવામાં કોઈને કાંઈ તકલીફ ન પડે, પહોંચાડવાની જવાબદારી આપણી, અંગીકાર કરવાની જવાબદારી આમાંની, પહોંચાડવાની જવાબદારી આપણી, એટલા માટે એ વાત એ રીતે રાખી છે। એની પાછળ જે આશય છે એટલો છે કે જગત આખાને आओ जो वितराग मार्ग है पूरा जगत को मिल जाए, सभी जीव सुखी हो जाए, विश्व में कोई दुखी नहीं हो, ऐसी एक बहुत विशाल भावना इसके पीछे रही है। और जो लोग उसको मंगाते हैं, पढ़ते हैं, वो अपनी भावना को का आदर करते हैं। क्या करते हैं? अपनी भावना का आदर करते हैं और अपनी भावना बढ़ाने में वो निमित्त होते हैं, तो ये हमारे लिए उपकारी है। हम उसको मुफ्त में बेचते हैं इसलिए हम उपकारी है, वो बात नहीं है। बात ऐसे लेना, इसलिए यहाँ भी जो भी बैठे हैं उसको जिसको नहीं आता हो उसने अपना एड्रेस दे देना, उसको भेजा जाएगा। कुछ जो नए नए लोग आते हैं उसको सहानुभूति प्रकाश नहीं मिलता हो तो अपना पता लिखा देना है। इस तरह से भावना से तभी मुमुक्षुता निर्मल होती है। क्या कहते हैं? मुमुक्षुता में भी जितनी मात्रा में दर्शन मोह का सद्भाव है, मिथ्यात्व का और अज्ञान का सद्भाव है, उतनी भूमिका मलिन है। क्या है? उतनी भूमिका मलिन है। और जितना अपनापन कम होता है संयोग में, शरीर से लेकर सब संयोग है, जितना अपनापन कम होता है उतनी मुमुक्षुता निर्मल होती है, यानी ज्ञान में निर्मलता आती है। और ज्ञान निर्मल होने से अपने जो विवेक के परिणाम है और अविवेक के परिणाम है उसकी समझ बहुत अच्छी तरह आती है कि कहाँ हमको लाभ होता है, कहाँ हमको पारमार्थिक नुकसान होता है, ऐसी सूझ हमको आ जाती है। पत्र तो दोनों छोटे छोटे हैं, एक एक पोस्ट कार्ड दिखा है सुगम फुलबाग भाई को, परंतु बहुत सी बातें लिख दी हैं और मुमुक्षु की भूमिका को प्रयोजन भूत जो बातें हैं वो बातें लिखी हैं। समर्पण बुद्धि अपनत्व उठाने के लिए है। जो अपनापन की बुद्धि है उसके विरुद्ध क्या है? समर्पण बुद्धि है।
समर्पण की भावना में अपेक्षित
मेरी चीज का मैंने समर्पण किया ऐसा भाव होवे तो वो समर्पण नहीं है, वो अहम भाव है। क्या? कि मेरापन तो मैंने रख लिया, ये तो मेरी चीज थी, मेरे रुपये थे, मेरे पैसे थे, वो मैंने दिए, तो अपने तो रख करके दिए, वो तो अहम भाव किया। यानी लोग क्या करते हैं, नाम लिखाते हैं ना, कोई भी चीज देते हैं तो इसके उसके पीछे इसका नाम हो, मेरा नाम आना चाहिए। तो वो उसमें अपनत्व रखने की बात है, उसमें तो कोई आत्म कल्याण होने वाला है ही नहीं। जो अहम भाव करता है, अभिमान करता है या मान का पोषण करता है, समर्पण करके भी, गुरुदेव तो कहते हैं कि वो पुण्य भी नहीं करता, वो पाप करता है। क्या समर्पण करके वो पुण्य भी नहीं करता, वो पाप करता है?
कोई पण कार्य में नाम लखावू समर्पण नथी एम कुछ।
नाम लिखाने के पीछे नाम लिखाने का हेतु नहीं होना चाहिए, कभी कभी उसमें दूसरा हेतु भी होता है। वो ऐसा होता है कि दूसरे को प्रेरणा मिले, ऐसा एक कोई हेतु भी होता है नाम देने के पीछे, कि देखो ये समझदार भी ऐसा करता है तो हमको तो करना ही चाहिए, प्रेरणा मिलती है। दूसरे को भाव आता है, क्या नाम पढ़ करके भी भाव आता है कि देखो वो तो हमारे से उतना संपन्न नहीं है फिर भी उतना देते हैं, हम तो उतना ही नहीं देते, हमारे पास तो बहुत है। बचाव करना एक बात है, बचाव नहीं करना दूसरी बात है। कोई बचाव कर लेता है तो नुकसान में जाता है, और केवल भावना शुद्ध होती है ऐसा भी बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। कभी कभी क्या है, कोई मुमुक्षु ऐसा करते हुए हमारा नाम देने का हमारा अभिप्राय नहीं है, तो लेने वाला ऐसा बोलता है कि भाई आपका नाम पढ़ करके दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगी, आपको तो अहम भाव होने वाला है ही नहीं क्योंकि आपका तो नाम देने का अभिप्राय है ही नहीं। इस तरह से भी होता है। तो एक बात को कई अनेक पहलू होते हैं, हमको सब पहलू समझ करके जो हितकारी है वही करना है, अहितकारी है वो नहीं करना है। साफ बात हो सत्संग भी सर्वार्पण बुद्धि से करना, वो बात 609 पत्र में कृपालु देव ने की है। 609 पत्र में है सर्वार्पण बुद्धि से सत्संग, यानी जो जिसको सत्संग का लाभ होता है, पारमार्थिक लाभ होता है, आत्मा पर उपकार होता है, असर होती है कि अभी मेरा कल्याण की बात से होने वाला है, उनको तो ऐसा समर्पण भाव आए बिना रहता ही नहीं। उसको जरूर आता है, अवश्य आता है। तो दोनों पत्रों में आशय तो ठीक है कि जहां भी हमारा अस्तित्व नहीं है वहां हम अपनापन करके बैठे हैं, इसके इसलिए उसको अहंकार या अभिमान कहने में आता है। जहां हमारा अस्तित्व है, ऐसा जो हमारा त्रिकाली सत्ता है, वहां अपनत्व होने से तो सम्यक हो जाएगा। सम्यक क्या है, निज सत्ता का स्वीकार है श्रद्धान में, उसी का नाम ही सम्यक तो है, तो करने लायक है। धन्यवाद।